आप सुन रहे हैं राजेंद्र मोहन भटनागर की लिखी कहानी अथ पद्मावती, मनीष भवन की आवाज में। अध्याय एक। शुक्ल पक्ष, बुधवार का दिन, चतुर्दशी। इन तीनों का संगम रणथंभौर का कायाकल्प कर देता है। इस बार चतुर्दशी बनी, उससे अगले दिन पूर्णिमा। प्राय शुक्ल पक्ष के बुध को पड़ने वाली चतुर्थी को मेला जुड़ता था। इस बार न त्रयोदशी चतुर्दशी साथ पड़ी और न पूर्णिमा प्रतिपदा से पहले आई। ऐसा संयोग मिलना सहज नहीं है। पंचांगों की भिन्नता के कारण राज्य की ओर से एक तिथि की घोषणा कई दिन पूर्व कर दी जाती है, ताकि मेले के आयोजन में कोई संशय ना रहे। हाट की तैयारी में बहुत पहले से दुकानदार आकर जुटने लगते हैं। दूर दूर से व्यापारी, तमाशे वाले, खिलौने वाले, नाच गाने वाले, करतब दिखाने वाले, कपड़े वाले, जूते जूतियों वाले, जादू दिखाने वाले, घोड़े, बैल, बकरी, गाय आदि के व्यापारी, अस्त्र शस्त्र वाले, मिठाई वाले इत्यादि जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जनमानस एक छोर से दूसरे छोर तक का आता है। राज्य की ओर से दूर से आए व्यापारियों के लिए रहने की जगह, सुरक्षा, पानी आदि का प्रबंध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। बाहर से आने वालों की ठहरने की व्यवस्था भी रहती है। पशु मेले के लिए वहीं पर अलग व्यवस्था होती है। रणथंभौर अपनी प्राकृतिक संपदा, जंगल, शेर चीते, जंगली सुअर, भालू हिरण आदि के लिए सुविख्यात है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। इन पहाड़ियों से घिरे होने से रणथंभौर का किला द्वीप जैसा नजर आता है। वहां का शासक है रावल हमीर चौहान। वहां कुंड, तालाब, नदी आदि को पार करके ही पहुंचा जा सकता है।
माँ माँ, पहले शुक्ल पक्ष पर बुधवार को चतुर्थी पड़ने वाले मेले में नहीं जाने दिया था, लेकिन इस बार महामेले में मैं अवश्य जाऊंगी,
पद्मा ने मचलते हुए कहा।
अभी दिन पड़े हैं, बात करूंगी लाडो, मन में उथल पुथल मतला। पूनो को मेला पूरी तरह सज धज चुकेगा, तनिक चैन पा।
पद्मा कुछ नहीं बोली। क्या बोले, माँ सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करती। कभी कभी उसे लगता है कि वो उसकी माँ है ही नहीं। जब देखो तब उसकी बात को टाल जाती हैं। जब वो छोटी थी, 5-1 वर्ष की रही होगी, यही पूछने पर कि मेघ पानी कहाँ से लाते हैं और कभी रिमझिम वर्षा क्यों करने लगते हैं और कभी कभी ताबड़तोड़, माँ चुप रह गई। तब वो पुनः यही प्रश्न करती तो माँ कुछ तेज आवाज में नाराज होकर कहती,
हरदम मेरे कान मत खाया कर छोरी।
माँ, कान क्या अपूप, यवागु, शीरा या पायस है जो खाया जा सके?
उसने सोचते हुए शांति से पूछा।
माँ, कान क्या मालपुआ, लस्सी, शीरा या खीर है जो खाया जा सके?
उसने सोचते हुए शांति से पूछा।
मेरी माँ, मेरा सिर मत खा।
सामने से हंसते हुए धनु कुंवर ने प्रवेश किया और कहने लगी,
पद्मा बेटी, जब तुझे कान सिर खाने की इच्छा हो तब तू मारे कन्ने चली आया कर। मारे कान बहुत बड़े हैं, तू जितना चाहे खाना, वे रत्ती भर भी कम या छोटे नहीं होंगे।
थाने ही जाहे से चढ़ा लियो है काकी सा, छोरी है पराए घर को धन, दबकर रहेगी तो चोखा निभालेगी,
मनका ने गंभीर बनी रहकर कहा। पद्मा अपनी हंसी रोक नहीं सकी। काकी सा के गुलाबी चेहरे पर गुलाब खिलने लगे थे। माँ काकी सा से बात कर रही थी, बात भी पद्मा के संबंध में। गहरी सांस लेकर कहने लगी,
अब जे वृक्ष होती जा रही है, वृक्ष भी आम्र मंजरी सी महकती हुई, चांदनी पौष की धूप से खिलती हुई, अभी से जाकी जवानी गजब ढाने लगी है, और मनसूबो देखो, महा के मेले में आग लगाने की रखती है।
मन का मन छोटा ना कर, तेरे सोचने भर से लहलहा उठा वृक्ष न मुरझा सकेगा और न छोटा पड़ सकेगा, तकदीर में लिखा कौन बांच सका है।
धनु कुंवर सीधे सादे ढंग से समझाती हुई ओढ़नी को ठीक कर रही थी।
थे तो राजघराने से आई हो बींदनी, और जे भी राजघराना है, ठिकानेदारों से लेकर राव रावण, राणा महाराणा, सबके सब बींदनी को ही धर्म मर्यादा में बांधते आए हैं। उनके लिए ना कोई लक्ष्मण रेखा है और ना कोई आचार।
सैंपल कंप्लीट, रेडी टू कंटिन्यू।